आरवी सुभाष जी की मालिश करने के बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में शान बेड पर लैपटॉप लिए बैठा काम कर रहा था। दूसरी तरफ फाइलें फैलाई हुई थीं और महाराजाओं की तरफ फैलकर बैठा हुआ था। आरवी अंदर आई तो उसकी हरकत देखकर उसके बचपने पर मुस्कुरा उठी। फिर वो कबर्ड की तरफ बढ़ गई। देखा तो उसके सारे कपड़े नीचे पड़े थे। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गईं। उसने घूर कर शान को देखा, जो हर बात से अनजान बने अपना काम कर रहा था। फिर आरवी ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और सारे कपड़ों को वापस अंदर अच्छे से रखने लगी। बेचारी का पौना घंटा निकल गया इसी में। पहले ही थकी हुई थी, अब और थक गई। उसने अब अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। शान ने तिरछी मुस्कान के साथ बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और वापस अपने काम में लग गया। आरवी चेंज करके बाहर आई, फिर शान को एक नज़र देखकर कमरे से बाहर निकल गई। अंशु के कमरे में पहुंची तो देखा अंशु पूरे कमरे में यहां से वहां ठुमकती हुई भाग रही है और छाया उसके कपड़े लिए उसके पीछे दौड़ते हुए उसको रुकने के लिए कह रही थी। ये नज़ारा देखकर आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वो थोड़ा अंदर आई तो अंशिका भागते हुए उससे टकरा गई। आरवी ने तुरंत झुककर उसको गिरने से बचाया, फिर छाया को देखकर बोली, ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें तो मैंने अंशु को कपड़े चेंज करवाने के लिए कहा था और यहाँ पकड़म पकड़ाई खेला जा रहा है। छाया ने तुरंत ही सफाई दी, नहीं भाभी, मैं तो अंशु के कपड़े ही बदल रही थी, पर वो बदलने ही नहीं दे रही। कह रही है आपसे ही पहनेगी, तब से समझा रही हूँ पर वो मानी नहीं रही। आरवी उसको हैरानी से देखने लगी तो उसने आगे कहा, भाभी, आपके सामने ही ये कोई शरारत नहीं करती है। आपकी बात इतनी आसानी से मान लेती है, पर मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। इतना परेशान करती थी, हाथ ही नहीं आती थी, छाया ने परेशान होकर कहा। उसकी बात सुनकर आरवी ने अंशु को अपनी गोद में उठाते हुए उसे देखकर सवाल किया, अंशु बेटा, ये छाया दीदी क्या कह रही हैं? आप उनकी बात नहीं सुनती हैं, उन्हें परेशान करती हैं। आप बैड गर्ल कब से बन गई? नो मम्मा, अंशु गुड गर्ल है। अंशु को मम्मा से कपड़े बदलवाने थे, इसलिए अंशु ने छाया दीदी को मना किया, पर वो नहीं मानी तो अंशु ने उन्हें परेशान कर दिया। अंशु ने इतनी मासूमियत से सब कहा कि आरवी को उस पर गुस्सा आने की जगह उस पर प्यार आने लगा। उसने प्यार से उसके चेहरे को चूम लिया, फिर छाया से कपड़े लिए और उसके कपड़े बदलवाने के बाद उसको लेकर बेड पर लेट गई। छाया भी पास बैठ गई। आरवी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसको कहानी सुनाने लगी। कुछ देर में अंशु सो गई। आरवी अब भी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। कुछ देर बाद अर्पिता जी वहां आई तो आरवी को अब भी वहां देखकर हैरानी से बोली, आप अभी तक यहीं हैं, अपने कमरे में नहीं गई? आवाज सुनकर आरवी उठकर बैठ गई और उन्हें देखकर बोली, अंशु को सुला रही थी। अब वो सो गई है तो आप भी अपने कमरे में जाइए, अंशु के पास छाया रहेंगी। जो फैसला लिया है उस पर अब आपको टिके रहना होगा, उन्होंने उसे समझाया तो आरवी ने ना चाहते हुए भी हामी भर दी। उसने अंशिका के माथे पर फैले बालों को पीछे करते हुए उसके माथे को चूम लिया, फिर उसको अच्छे से लिटाने के बाद उसको चादर से ढक दिया और छाया को उसका ध्यान रखने का कहकर बाहर चली गई। जी तो बिल्कुल नहीं था, जानती थी शान चैन से उसे रहने नहीं देगा, पर अब लड़ना था तो उससे। कमरे में घुसी तो शान अब भी बेड पर बैठा काम कर रहा था। आरवी ने उसे एक नज़र देखा और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो बेड पर उसे ना देखकर चौंक गई। फिर वो सोफे की तरफ बढ़ गई तो देखा शान सोफे पर पसरकर बैठा काम कर रहा था। आरवी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, पर शान ने नजरें उठाकर उसे देखा तक नहीं। आखिर में आरवी ने ही उसे देखकर कहा, आप यहां से हटेंगे? मुझे नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? शान ने भौं उचकाकर उसे देखा तो आरवी ने आगे कहा, मुझे नींद आ रही है तो अगर आप यहां से हटेंगे तो मैं सो पाऊंगी। शान ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, तुम यहां नहीं सो सकती। आरवी ने तुरंत ही सवाल किया, क्यों नहीं सो सकती मैं यहां? शान ने उसको घूरते हुए कहा, क्योंकि ये कमरा मेरा है, यहाँ की हर चीज़ पर मेरा हक है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाओ। तुम्हारे लिए इस कमरे में कोई जगह नहीं है, अगर सोना है तो कहीं और जाकर सो जाओ, वरना यूं ही खड़ी रहो सारी रात। इतना कहकर वो वापस सोफे पर पसर कर बैठ गया। उसकी बात सुनकर आरवी को गुस्सा आने लगा। उसने उसी के अंदाज में जवाब दिया, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी हर चीज़ पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। चीज़ें क्या, आप पर भी मेरा अधिकार है, वो तो मुझे ही आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर आप पर अपने अधिकार छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपना हक छोड़ दूंगी। मैं यहीं सोऊंगी, अगर आपको सोफे पर से हटने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपने सोने के लिए कहीं और जगह बना लूंगी। इतना कहकर वो बेड की तरफ बढ़ गई। शान उसको गुस्से से घूरने लगा और देखने लगा कि अब वो क्या करेगी। आरवी ने आधे बेड पर से सारी फाइल उठाकर दूसरी तरफ रख दी और लेट गई। शान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, वो दंदनाते हुए उसके तरफ बढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, आरवी, उठो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं सो सकती। तब भी आरवी ने अपनी आंखें नहीं खोली, आंखें बंद किए हुए ही बोली, अब तो मैं सो गई, अब मैं नहीं उठने वाली, आपके लिए सोफा खाली है, आपने मुझे तो वहां नहीं सोने दिया, तो आप खुद वहां सो जाइए, मैं आप बेड पर ही सोऊंगी। वैसे थैंक्स, सोफे पर सोना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता, आपने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक्स। उसने आंखें खोलकर मुस्कुराकर उसे देखा, फिर वापस अपनी आंखें बंद कर ली। शान उसको हैरानी से देखने लगा और अगले ही पल गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने खुद से ही कहा, मैं और सोफे पर सोऊंगा, लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। उसने दूसरे तरफ से सारी फाइल समेटकर उन्हें सही से टेबल पर रख दिया और सोने के लिए लेट गया। पर फिर उसके दिमाग में कुछ आया और वो वापस उठकर आरवी के पास आ गया। आरवी थक गई थी तो वो अब नींद में सो चुकी थी। शान ने पानी का जग अपने हाथ में उठाया और तिरछी मुस्कान के साथ आरवी को देखकर जग उसके ऊपर उल्टा कर दिया। सारा पानी उसके मुंह पर गिरा तो वो हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गई और चौंककर सामने देखा तो शान ने उसको ईविल मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, ये मेरा बेड है, अगर यहाँ सोने की कोशिश भी की तो सारी रात यही होगा तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो अपनी जगह जाकर लेट गया। आरवी ऊपर से पूरी भीग गई थी, उसने गुस्से में उसको घूरा, फिर बेड से नीचे उतर गई, अपने दूसरे कपड़े लिए और दंदनाते हुए बाथरूम में चली गई। उसने कपड़े बदले और बाहर निकलने लगी तो नजर बाल्टी पर चली गई। इसके साथ ही उसके लबों पर ईविल मुस्कान छा गई। शान अब सुकून से आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अचानक ही उसके ऊपर बहुत सारा पानी आकर गिरा तो वो हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गया। अपनी हथेली से अपने चेहरे को साफ करते हुए गुस्से से बोला, व्हाट द हेल इज दिस। आरवी ने निकलाते हुए कहा, जैसे को तैसा, सुना तो होगा ही, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप मेरे साथ गलत करेंगे तो बदले में वही भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। मेरी नींद खराब करके आप चैन से कैसे सो सकते हैं और मैं ऐसा होने कैसे दे सकती हूँ। मेरा बदला तो पूरा हुआ, अब आप आराम से सोइए, आपके बेड पर, मैं सोफे पर ही ठीक हूँ, स्वीट ड्रीम्स। इतना कहकर वो लबों पर मुस्कान सोफे की तरफ बढ़ गई, फिर उसके तरफ मुड़कर उसको चेतावनी देते हुए बोली, अब दोबारा कुछ करने की सोचिएगा भी मत, वरना सारी रात अगर आपसे जागरण न करवा दिया तो मेरा नाम भी आरवी शांतनु मल्होत्रा नहीं।
इतना कहकर वो सोफे पर लेट गई। शान गुस्से से उसको घूरता ही रह गया। अब उसने बेड को देखा तो आरवी ने एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया था तो वो पूरा भीग गया था। ये देखकर उसका पारा हाई हो गया, वो दमदनाते हुए उसकी तरफ बढ़ा, पर जब उसके चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी जो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था, वो कुछ कर नहीं पाया। कबर्ड से कपड़े लेकर चेंज किया और स्टडी रूम के सोफे पर जाकर लेट गया। आधी रात तक उसे नींद ही नहीं आई, आदत जो नहीं थी ऐसे सोने की, और सोफे पर वो ठीक से आ भी नहीं पा रहा था। आधी रात तक बेचैनी से करवट बदलता रहा, तब कहीं जाकर उसको नींद आई। अगले दिन आरवी की नींद सुबह जल्दी खुली, उसने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली, देखा तो बेड खाली थी और शान रूम में भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने खुद को देखकर कहा, मैंने उन्हें पूरा भिगा दिया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ये कैसे हो गया? मेरी धमकी से वो डर जाए ये तो नहीं हो सकता, फिर कुछ किया कैसे नहीं उन्होंने, और अब खुद कहाँ गायब हो गए हैं। चल अच्छा है, उस राक्षस से तुझे बचकर ही रहना चाहिए, वो यहाँ वापस आए और तुझे टॉर्चर करने की कोई तरकीब सोचे उससे पहले ही रेडी होकर रूम से बाहर निकल जा। वो उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और कपड़े लेकर नहाने जा ही रही थी कि स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और शान ने बाहर रखा। आरवी की नज़रें भी उस तरफ घूम गई। शान सोफे पर सोया था, हाथ पैर मोड़े मोड़े अकड़ गए थे तो बेचारा उन्हें स्ट्रेच करते हुए बाहर आ रहा था। उसे देखकर आरवी ने मन ही मन कहा, तो ये राक्षस वहाँ सोए थे, लगता है इनकी रात तो काफ़ी अच्छी गुजरी है। सही है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरी नींद खराब की थी तो खुद चैन से कैसे सो सकते थे, भगवान भी खूब इंसाफ करते हैं। उसके लबों पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। वहीं शान की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी उसके कदम रुक गए और आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गईं। टू बी कंटिन्यूड।